This is an ABP Life podcast.
पिछले एपिसोड में हमने आपसे बात की थी कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब बैन के फैसले पर, जो वर्डिक्ट आया था उस पर। हमने आपको तब भी बताया था कि हम जल्द ही बात करेंगे उस फैसले के खिलाफ एक SLP दायर करने वाले वकील अनस तनवीर के साथ। अब SLP क्या होती है? स्पेशल लीव पिटीशन। अनस हमें इस SLP के बारे में और ज्यादा बातें बताएंगे, ज्ञान देंगे, क्योंकि उन्होंने ये फाइल किया है इस फैसले के खिलाफ। आज अनस हमारे साथ हैं और वो हमें ये भी बताएंगे कि इस केस की कुछ क्या टेक्निकलिटीज हैं जो हम नहीं पकड़ पाए, जो शायद एक लॉयर ही समझ सकता है, एक वकील ही समझ और समझा सकता है। तो हाय अनस, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट FII। अनस, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या होती है SLP?
स्पेशल लीव पिटीशन। तो आर्टिकल 136 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको मोटा मोटा समझिए बिना टेक्निकलिटी में गए हुए, कि अगर हाईकोर्ट का कोई जजमेंट है या किसी कोर्ट का जजमेंट है जिसमें कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट को डिटरमाइन करना चाहिए, तो उस पर आप उस ऑर्डर को असेल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करते हैं। जब वो SLP अलाउ हो जाती है, जब उसमें लीव ग्रांट हो जाती है, स्पेशल लीव पिटीशन है, जब लीव ग्रांट हो जाती है तो वो अपील बन जाती है। तो ये एक तरह से अपील है हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ।
जी, तो सर नॉर्मली हमने क्यों अपील नहीं की और हमने SLP क्यों फाइल की, उस पर थोड़ा अगर बात करें।
हाँ, क्योंकि प्रोविजन यही है, प्रोसीजर यही है कि आप 136 में ही आते हैं। अपील डायरेक्टली कुछ कुछ स्टैट्यूट्स में अलग से होती है जिनमें आप डायरेक्टली अपील फाइल करते हैं, जनरल उसमें आप SLP ही फाइल करते हैं।
ठीक है, कर्नाटक हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है और उस पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, क्योंकि उसी के खिलाफ आपने जो है SLP फाइल की है।
मेरी अपनी बिलीफ है, मेरे क्लाइंट्स की यह बिलीफ है कि वो जजमेंट गलत है, और कानूनी लिहाज से भी जो सवाल फ्रेम किए थे कोर्ट ने, जिन पे फैसला दिया है, उनमें से कई सवाल तो किसी ने पूछे ही नहीं थे। कि जैसे एक सवाल कोर्ट का मोटा मोटा ये समझिए वो किया गया कि क्या यूनिफॉर्मिटी के बिना हो सकता है, हाँ, या क्या कोई शासन की जो पावर है यूनिफॉर्म रिकमेंड करने की, क्या वो पावर आर्टिकल 19 का वायलेशन है। अब सवाल ये है कि ये किसी भी पेटिशनर ने ये सवाल नहीं किया था, किसी को यूनिफॉर्म से दिक्कत नहीं है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। वहां का वो उन कॉलेजेस के यूनिफॉर्म में ये चीज प्रिस्क्राइब्ड है, मना नहीं है। आप दुपट्टा अलाउ है सेम कलर का एज यूनिफॉर्म, अब उस दुपट्टे को मैं अपने सर पे लेता हूँ, अपने चेस्ट पे लेता हूँ, कैसे लेता हूँ वो आप नहीं तय करेंगे। मैं उस दुपट्टे को कैसे भी पहन सकता हूँ जब तक कि वो डिसेंट है। यूनिफॉर्म का मकसद क्या होता है कि एक सब सिमिलर दिखे, किसी में क्लास डिफरेंस ना दिखे, और दूसरा कि डिसेंट रहे। क्या कोर्ट ये कह सकती है, ये सवाल है, क्या शासन ये कह सकता है कि आप दुपट्टे को बस एक ही तरीके से लो, या क्या आप औरत की चॉइस को आप नहीं छीन रहे, आप उसके अधिकार को नहीं छीन रहे, और उसके ये मौलिक अधिकार है।
अनस, अगला सवाल ये है कि कई लोग इसको दो लेंस से देख रहे हैं। लोग इस एक तो देख रहे हैं फेमिनिस्टिक लेंस से देख रहे हैं, जिसमें एक वुमन और उसकी एजेंसी की बात हो रही है, दूसरा देख रहे हैं कि ये एक माइनॉरिटी पे चोट है। आप इसे किस लेंस से देख रहे हैं?
मैं सबसे पहले तो इसको इस लेंस से देख रहा हूँ कि कानून का दुरुपयोग हुआ है, कि जजमेंट गलत है। देखिए, सवाल सबसे बड़ा कोर्ट के सामने ये होना चाहिए कि शासन ने उन गुंडों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जो अकेली लड़कियों के पीछे नारेबाजी करते हुए, हैकल करते हुए, भीड़ बन के खतरनाक तरीके से उनको खतरे में डालते हुए दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, धमका रहे थे। आपने, शासन ने उस पर क्या कार्रवाई की? ये और कोई मुद्दा नहीं है, ये फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, और फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे आप यहां तक क्यों पहुंचेंगे? आपने असली सवाल देखा ही नहीं। कोर्ट ने एक जगह ये कहा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है कैंपेन की, एकदम से ये कैसे हुआ, एक इंडिकेशन था ये। पहली बात, अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है, मान लीजिए है, मैं कहता हूं नहीं है, मैं जानता हूं नहीं है, लेकिन एक बार के लिए अगर ये कहा जाए कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है, तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स से अलग क्या है? आप डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स कैसे अलग कर देते हैं? क्या छात्र संगठन नहीं होते? हर पॉलिटिकल पार्टी के छात्र संगठन है, वो किस लिए बने? वो छात्र राजनीति के लिए बने, वो राजनीति कॉलेज में जो हो रही है, स्कूलों में हो रही है, उसके लिए बने हैं। और राजनीति सिर्फ इस फॉर्म में नहीं, मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में था, वहाँ कोई इलेक्टेड वो यानी छात्र संघ नहीं था, लेकिन कमिटीज थी, उन कमिटीज में पॉलिटिक्स से ही डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक तरीके से ही इलेक्शंस होते थे, तो पॉलिटिकल भी है तो क्या गलत है, अपने अधिकार के लिए पॉलिटिकली लड़ना भी क्या गलत है, और कैसे लड़ेंगे आप, पॉलिटिकली ही लड़ेंगे डेमोक्रेसी में, और कोई तरीका तो है नहीं। तो एक तो कोर्ट का इस तरह से इसको फ्रेम करना गलत था, ये कमेंट करना गलत था। दूसरा कोर्ट ये कहती है कि हम फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, यू आर हाउ आर यू इमेंसिपेटिंग वुमेन बाय दिस, बाय दिस द इफेक्ट ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑर्डर, द इंटरिम ऑर्डर दैट केम एंड वी सॉ ऑन टीवी was public disrobing of Muslim women. They were asked to take out their hijab and they had to take it out in full public gaze. How is that consistent with law? How is that consistent with the women's idea of choice? Emancipate unko karo jinhone aapse emancipation ki guhari nahi ki, jinhone aapse kaha hi nahi emancipate karo, wo aap unko kamzor maan ke us presumption pe kyon chal rahe ho? Lekin ye to decent tha, ye to sabse decent hai, to is pe aapko objection kyon hai? और स्टेट की पावर कहां से आ रही है ये ऑब्जेक्शन लाने की? इन सवालों पे कोर्ट नहीं गए और ये थे सवाल कोर्ट के सामने, ना कि ये इस्लाम में एसेंशियल है कि नहीं, या आपको महिलाओं का इमेंसिपेशन करना है कि नहीं, या ये यूनिफॉर्म के खिलाफ है।
आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि कई लोग बोल रहे हैं कि जो SLP फाइल हो रही है उससे काफी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर पूरे भारत के लिए ये बन गया भाई, लॉ बन गया कि नहीं हिजाब पे बैन ये वो, तो फिर कैसे चलेगा बताइए, उसके थोड़े टेक्निकलिटीज अगर आप मुझे बताएं।
हाँ, मैं टेक्निकलिटी समझता हूँ। स्टेट ऑफ कर्नाटका ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके थ्रू इसको बैन किया, आप उसको चैलेंज करेंगे क्योंकि आपके अधिकार के खिलाफ है, अधिकार के खिलाफ होगा तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप आर्टिकल 226 में सुप्रीम हाईकोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। बेहतर होता है हमेशा हाईकोर्ट जाना, आर्टिकल 226 में आपने अपना अधिकार का प्रयोग किया, आपने 226 में वो फाइल कर दिया, एक हाईकोर्ट का जजमेंट आता है, वो जजमेंट आपको लगता है कि आपके अधिकार के खिलाफ है वो भी, या कानूनन गलत है वो भी, तो आपका अधिकार है 32 में आना। पूरे देश में करने की बात ही नहीं है, पूरे देश में ये करना चाहें तो उससे जजमेंट पे या कोर्ट प्रोसीडिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो अलग अलग स्टेट अपना अपना लॉ लेके आएंगे जो चैलेंज होगा, जजमेंट से उससे फर्क नहीं, जजमेंट तो भाई स्टेट और कर्नाटका के जो जजमेंट के खिलाफ है, या तो वो उस जजमेंट को अपहोल्ड करेगा या उसको ओवररूल करेगा, उसको हटा देगा। तो अगर हटा देता है तो वापस उस पोजिशन पे जहां ये लड़कियां हिजाब पहन के अपने स्कूल जा सकती हैं, और अगर वो उसको रखता है तो वो सिर्फ स्टेट ऑफ कर्नाटका के लिए महदूद होगा, उसके बेसिस पे शासन का बाकी स्टेट्स कानून बना सकते हैं, ये बात है, लेकिन वो कानून उनको बनाना पड़ेगा और फिर से वही प्रक्रिया उसको चैलेंज करने की 226 या 32 में शुरू हो जाएगी।
शुक्रिया अनस हमसे बात करने के लिए, हमें जो छोटी छोटी पेचीदा चीजें हैं, टेक्निकलिटीज हैं, वो करेक्ट करने के लिए, वो बताने के लिए आए। होप कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो समझ रहे होंगे कि कानून की क्या पेचीदियां होती हैं, कानून की क्या टेक्निकलिटीज होती हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग आउट योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अनस, एज यूजुअल। ये थे अनस तनवीर, और इन्होंने हमें अपने विचार बताए कि वो क्या सोचते हैं इस फैसले के बारे में, और वो क्यों अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करेंगे। दोस्तों, इस केस से जुड़ी सभी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। कहाँ? ABP लाइव पॉडकास्ट पर। मैं हूँ साहिबा खान और आप सुन रहे थे FYIN की फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार।
फिजिकल डिस्टेंसिंग के टाइम पे न्यूज डिस्टेंसिंग मत करो, डाउनलोड करो ABP लाइव ऐप और जानते रहो।
This is an ABP Life podcast.